नमस्कार भारत 10 दिसंबर दिन रविवार सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। इस्लामिक स्टेट के साथ इराक का युद्ध खत्म, प्रधानमंत्री अबादी ने किया ऐलान। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 68% मतदान, अब सबकी नजरें 14 दिसंबर पर। भारत श्रीलंका के बीच पहला एक दिवसीय मुकाबला आज धर्मशाला में, रोहित शर्मा होंगे कप्तान।
जब खुद कॉन्फिडेंस ना हो आप में, शायद आप कप्तानी में भी वो एग्रेसिव डिसीजन नहीं लेते, ऐसा विराट कोहली के साथ नहीं हुआ और मैं चाहता हूँ कि रोहित शर्मा भी उसी तरह से कप्तानी करे।
और सुनिए,
लड़कियों को बल्ला फुसला के प्यार जाल में फंसा के रेगर मोहल्ले में एक घटना हो चुकी है ऐसी।
देखो यार, कुछ चीजें मतलब वास्तविक चीजें होगी जब तो आदमी ऐसा कदम उठाता है, बाकी
सब विस्तार से। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, मानसी दास से। इराक ने कथित इस्लामी चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अपने जंग के खत्म होने की घोषणा कर दी है। इराकी सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित एक संदेश में प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी ने कहा कि आज़ादी का सपना अब हकीकत बन चुका है। इराकी सीरिया सीमा पर पूरी तरह नियंत्रण इराक को मिल गया है। गुजरात विधानसभा चुनाव में कल पहले चरण के मतदान शांतिपूर्वक रूप से खत्म हो गया। इस चरण में कुल 89 सीटों के लिए वोट डाले गए। मुख्य चुनाव आयुक्त ए.के. ज्योति के अनुसार मतदान शाम के 5 बजे समाप्त हुआ और करीब 68% वोटिंग दर्ज की गई। उनका कहना था कि पहली बार सभी विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल किया गया। इसराइल के शहर तेल अवीव में लगातार दूसरे सप्ताह हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर निकलकर भ्रष्टाचार के विरोध में प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू अपने पद से इस्तीफा दें। नेतन्याहू फिलहाल पुलिस जांच के घेरे में हैं, हालांकि उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों से इनकार किया है। उनकी लिकुद पार्टी का कहना है कि मौजूदा वक्त में अमेरिका और अरब दुनिया इसराइल के खिलाफ हैं और ऐसे में ये प्रदर्शनकारी देश को बांटने का काम कर रहे हैं।
I came here to demonstrate against the corruption of our government.
इसराइल की निवासी मीरा लेवनी कह रही हैं, मैं यहाँ सरकार के भ्रष्टाचार के विरोध में प्रदर्शन में शरीक होने आई हूँ। मैं उन सब चीज़ों का विरोध करती हूँ जो हमारे देश में चल रहा है और हम यहाँ सुरक्षित नहीं महसूस करते। हमें अपने नेताओं का व्यवहार अच्छा नहीं लगता। एक अन्य इसराइली निवासी इलान बेंडोरी ने कहा, मैं अपनी पत्नी और दोस्तों के साथ यहां आया हूं ताकि मैं इसराइली सरकार के भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज उठा सकूं। हमें अपने देश के लोगों को एकजुट करना होगा ताकि ये सरकार गणतांत्रिक रूप से सत्ता छोड़ दे या फिर इसे बदला जा सके। इसराइली निवासी मीरा लेवनी और इलान बेंडोरी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। होंडुरास में विपक्षी दलों ने औपचारिक रूप से पिछले महीने हुए राष्ट्रपति चुनावों को रद्द करने का अनुरोध किया है। उनका आरोप है कि चुनावों में व्यापक धोखाधड़ी की गई है। उन्होंने चुनाव अधिकारियों पर मौजूदा राष्ट्रपति खुआन ऑरलैंडो हर्नांडेस के पक्ष में परिणामों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। खुआन ऑरलैंडो हर्नांडेस को बेहद कम अंतर के साथ विजेता घोषित किया गया था। मुख्य विपक्षी नेता सल्वाडोर नसरल्ला ने कहा कि दुनिया सब देख रही है, देश में दोबारा चुनाव कराए जाने चाहिए।
No es una reclamación sencilla la que estamos haciendo y estoy muy seguro que no tenemos aquí en...
हम कोई साधारण मांग नहीं कर रहे हैं और मुझे इस बात का यकीन है कि यहाँ हमारे पास कोई संस्था नहीं जो चुनाव के इस मुद्दे को गंभीरता से ले और इसे समझ सके, लेकिन पूरी दुनिया को ये दिख रहा है और इसलिए मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया चाहती है कि होंडुरास के लोगों को उनका अधिकार ना मिले। होंडुरास के मुख्य विपक्षी नेता सल्वाडोर नसरल्ला के शब्द। जर्मनी के बर्लिन में हुई एक नीलामी में एक पूरा गांव करीब $165,000 में बेचा गया है। ये कीमत इस गांव की आरक्षित कीमत के जितनी थी। दुनिया भर के से लोगों ने इस गांव के बारे में पूछताछ की थी, लेकिन केवल एक व्यक्ति ने असल में पूर्व जर्मनी के अल्विन के इस गांव के लिए बोली लगाई थी। संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक मामलों के प्रमुख जेफरी फेल्टमैन ने उत्तर कोरियाई अधिकारियों से कहा है कि गलत अनुमानों को रोकने और बातचीत के लिए रास्ते खुले रखकर संघर्ष के खतरे को कम करने की जरूरत है। उत्तर कोरिया की अपनी 5 दिवसीय यात्रा के बाद एक बयान में फेल्टमैन ने कहा कि मौजूदा स्थिति बेहद तनावपूर्ण है और ये इलाके की शांति और सुरक्षा का मुद्दा है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा। नमस्कार भारत, सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत इराक से कर रहे हैं। याद कीजिए उन तस्वीरों को जिनमें नजर आ रहे हैं वो शहर और कस्बे जहां इमारतें तहस नहस हो गई थीं, चारों तरफ बर्बादी का मंजर, धमाकों के बाद उठते धुएं के बीच खून से लथपथ कोई बाप अपनी नन्ही बेटी को गोद में उठाकर भाग रहा था। सड़कों पर कहीं टैंक थे और कहीं इस्लामिक स्टेट के लड़ाके मुंह पर काला कपड़ा बांधे बंदूकें लहरा लहरा कर खौफ पैदा कर रहे थे। इराक के लोगों ने बीते 3 वर्ष के दौरान ऐसे कई दृश्य देखे हैं जो मीडिया के माध्यम से सारी दुनिया तक पहुंचे, लेकिन इराक को फिलहाल इस सबसे मुक्ति मिल रही है। इराक ने घोषणा की है कि इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जंग खत्म हो गई है और देश का जर्रा जर्रा इस्लामिक स्टेट के नियंत्रण से आजाद हो गया है। ब्यौरा सुनिए मानसी दास से।
इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी ने राजधानी बगदाद में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इराक सीरिया सीमा पर अब पूरी तरह से इराकी सैनिकों का नियंत्रण है। सीमा का ये इलाका इराक में उन कुछ बची खुची जगहों में से एक था जहां कुछ दिन पहले तक इस्लामिक स्टेट का नियंत्रण था। प्रधानमंत्री अबादी ने इराकी टेलीविजन पर बाकायदा घोषणा करके बताया कि इस्लामिक स्टेट के साथ लड़ाई अब खत्म हो गई है।
إن أرضكم قد تحررت بالكامل.
मेरे प्यारे इराक वासियों, आपकी जमीन को पूरी तरह से आजाद करा लिया गया है। आपके गांव और कस्बे आपको वापस मिल गए हैं। इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी ने इसके अलावा ये भी कहा कि इराकी ध्वज अब पूरे देश में फहराएगा।
نعلن لأبناء شعبنا ولكل العالم.
हम अपने लोगों और सारी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हमारे नायक इस्लामिक स्टेट के आखिरी गढ़ तक जा पहुंचे, वहां उनका सफाया किया और पश्चिमी अनबार प्रांत तक इराक का ध्वज फहरा दिया। प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी की इस घोषणा से 2 दिन पहले रूस ने ये कहते हुए सीरिया में अपना मिशन पूरा होने का ऐलान किया था कि वहां का जर्रा जर्रा इस्लामिक स्टेट के नियंत्रण से मुक्त हो गया है। अमरीकी विदेश विभाग ने इस घोषणा का स्वागत किया है और कहा है कि इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जंग जारी रहेगी। वैसे माना जाता है कि इस्लामिक स्टेट के ये लड़ाके दूर दराज के इलाकों में चले गए हैं। वहां मौजूद रहे विदेशी लड़ाकों के बारे में ये माना जा रहा है कि वो तुर्की की सीमा पर चले गए हैं। इस्लामिक स्टेट ने 3 साल पहले सीरिया और इराक के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर लिया था और लगभग 1 करोड़ लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला उनके लड़ाकों ने अपने हाथ में ले लिया था। बीते 2 वर्षों में इस्लामिक स्टेट के साथ लड़ाई के दौरान कई निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बीबीसी के अरब मामलों के संपादक सेबेस्टियन अशर का कहना है कि इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी के लिए ये एक वाकई गर्व करने का अवसर है, क्योंकि एक समय ऐसा भी आया था जब इस्लामिक स्टेट को इराक से खदेड़ना बेहद मुश्किल लग रहा था, लेकिन इस जीत के बाद भी इराक सीरिया और बाकी दुनिया में इस्लामिक स्टेट की विचारधारा के खिलाफ लड़ाई खत्म नहीं हुई है।
इराक ने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ युद्ध खत्म होने की घोषणा की। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुना आपने मानसी दास की जुबानी। नमस्कार, भारत में अब रुख कर रहे हैं भारत का, चलेंगे गुजरात, जहां कल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 89 सीटों पर मतदान हुआ। चुनाव आयोग के मुताबिक 68% मतदान हुआ है। मतदान के दौरान कांग्रेस ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में छेड़छाड़ की आशंका भी जताई। सुनिए गुजरात में कांग्रेस के नेता अर्जुन मोटवारिया को।
उसका स्क्रीनशॉट लिया है हमने, स्क्रीनशॉट लेकर हमने उसको भेजा भी है और उसके लिए हमने कंप्लेंट भी दायर की है। ये मशीन ब्लूटूथ से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं और जब ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं तो उसका सिग्नल आता है सीईओ गुजरात। ये बड़ी गंभीर और सीरियस कंप्लेन है और उसका मतलब ये है कि ये ब्लूटूथ से उसको टैम्पर किया जा सकता है, वाईफाई से ये मशीन क्यों जुड़ा गया है, तो ये उसका जवाब सीईओ के पास भी नहीं है। तो हमने कंप्लेंट दायर की है और ये ऐसा अगर ये है तो बड़ा ही ये मुद्दा चुनाव में गड़बड़ी का हो सकता है।
अर्जुन मोटवारिया के इस आरोप का जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता अरुण जेटली ने कुछ इस तरह दिया।
देखिए, ये बिल्कुल बेबुनियाद बयान होते हैं। जब इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं तो स्वाभाविक है कि एक संभावित हार की तैयारी की ये एक्सप्लेनेशन होती है।
अरुण जेटली को सुन रहे थे आप। अरुण जेटली के अलावा चुनाव आयोग ने दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में उन खबरों को पूरी तरह से निराधार बताया जिनमें गुजरात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में छेड़छाड़ की आशंका जताई गई थी। ये तो हुई बात कल की। अब सबकी नज़र 14 दिसंबर पर है, जब गुजरात में बाकी बची विधानसभा सीटों पर मतदान होगा और उसके बाद 18 दिसंबर को मतगणना के बाद पता चलेगा गुजरात में किसकी सरकार बन रही है। फिलहाल चल रहे हैं गुजरात के शहर अहमदाबाद। दूसरे चरण के मतदान से पहले मतदाताओं का मन टटोलने और चुनावी हवा को भांपने के लिए बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद गुजरात में मौजूद हैं। जुबैर साहब, सबसे पहले तो यही बताइए कि पहले चरण और दूसरे चरण में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको, जो बीच के अब 3-4 दिन बचे हैं, और कुछ मुद्दे या मामले या बयानबाजी कुछ बदलती नज़र आ रही है अब आपको?
देखिए, मैं तो अहमदाबाद में हूँ और कल आया हूँ, और यहाँ पर ऐसा मुझे माहौल लगा कि अभी इलेक्शन मोड में ही है पूरा शहर, क्योंकि यहाँ पर 14 तारीख को चुनाव होने हैं। और बाकी जगहों से जहाँ पर कल चुनाव हुए वहाँ से खबरें आ रही थी कितना % वोट डाले गए हैं और किस, तो उत्साह तो लोगों में था। और यहाँ जब चुनाव का पूरा राउंड 1 का खत्म हुआ तो उसके बाद प्रधानमंत्री भी जो यहाँ पर हैं, दौरा कर रहे हैं, उन्होंने ये दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीत रही है। उसी तरह से कांग्रेस के नेता और वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने भी दावा किया कि उनकी पार्टी सत्ता में वापस आ रही है। तो इस तरह के बयानबाजी हो रहे हैं यहाँ पर, और लोग जो यहाँ पर मुद्दे को जो यहाँ उठाना चाहिए, जैसे कि बेरोजगारी है और नोटबंदी से जो मार पड़ी है यहाँ पर कमजोर तबके को, वो लोग नहीं उठा रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर लोगों में थोड़ी नाराजगी भी है।
जुबैर साहब, ये बताइए कि पहले चरण में जिन सीटों पर मतदान हुआ है वो शायद भारतीय जनता पार्टी के गढ़ वाले इलाके थे, और जो दूसरे चरण में मतदान जिन सीटों पर होगा वो उतनी मजबूत सीटें नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, और आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों का भी कोई नया ब्यौरा सामने आया है इस दौरान, क्या जानकारी है आपके पास?
देखिए, दूसरे चरण में 851 कैंडिडेट्स हैं टोटल और 93 सीटें हैं जैसा कि आपने कहा, तो उसमें जो ब्यौरा आया है उसमें 21% क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं वो कांग्रेस ने खड़े किए हैं कैंडिडेट्स, और 15% भारतीय पार्टी ने खड़े किए हैं ऐसे कैंडिडेट्स को, और उसमें क्रिमिनल बैकग्राउंड में ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनके खिलाफ मर्डर केसेस के इल्ज़ाम हैं। और जो 93 सीटें हैं उसमें ऑफकोर्स जो पहले चरण में चुनाव हुए उसमें भारतीय पार्टी के बहुत ही मजबूत गढ़ थे ऐसे सूरत, जहाँ पे 70% वोट डाले गए, और लेकिन साथ साथ वो पटेलों के भी गढ़ हैं और वो हमेशा से वोट डालते आए थे भारतीय जनता पार्टी को, पिछले कम से कम 22 साल से तो दे ही रहे थे। अब वो गढ़ जो है पटेलों के, वहां पर बगावत हुई हुई है पटेलों के दरमियान, तो भारतीय जनता पार्टी को वहां पर कितना नुकसान होगा कल जो चुनाव में है ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन पार्टी ने तो यही दावा किया है कि बहुत भारी बहुमत से वो जीतेगी, और दूसरी तरफ कांग्रेस भी यही दावा कर रही है। तो ये दिलचस्प था कल का जो दौर था, और सेकेंड फेज में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कांग्रेस ने पिछली बार जो 61 सीटें मिली थी कांग्रेस को, उसमें कई सीटें इन इलाकों से भी मिली थी, तो उनके लिए ज्यादा आसान कहते हैं कि होगा।
जुबैर साहब, एक बड़ा अजीब सा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आप कोई पहली बार गुजरात नहीं गए हैं और आपने इससे पहले भी कई चुनाव कवर किए हैं, इस बार जब आप गुजरात पहुंचे हैं तो आपको पहले वाले गुजरात में और आज के गुजरात में कोई फर्क नजर आया एक पत्रकार की नज़र से?
देखिए, मैं कब लजवक्त होगा ये कहना पूरी तरह से, लेकिन कल जो अपने पुराने जो लोग यहाँ पे मिलता जुलता रहा हूँ जब भी आया था, उनसे भी मुलाकात की, कई और लोगों से भी मिला, और जो मुझे एक तरह का मैं एहसास हुआ वो बहुत ही अजीब था, ये कि पहले जब आते थे तो नरेंद्र मुरार तो अपने प्रधानमंत्री के बारे में जो लोगों की राय होती थी वो कि भाई इनको अनटचेबल है, इनको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। आज जो है नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ काफी ऐसे जो है लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं खुल के, और यहाँ तक ये भी कह रहे हैं कि ये जो बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरह के अल्फाज उन्होंने शब्द यूज किए कि वो अब उन इनका असर उन पे नहीं होता है, काम कम हुआ है, बातें ज्यादा हुई है, ये भी कह रहे हैं लोग। ये बदलाव मैंने देखा जो पहले कभी नहीं देखा था।
जुबैर साहब, आप गुजरात पर नज़र बनाए रखिए, अगले कार्यक्रमों में भी हम आपके पास आते रहेंगे। बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद थे। और आइए एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर, लेकिन आज दिल्ली से नहीं, एक बार फिर हम गुजरात चलेंगे हमारे सहयोगी रजनीश कुमार के पास। रजनीश, कहां पर मौजूद हैं आप, और आज गुजरात में जो अखबार छपे हैं उनकी सुर्खियाँ, हेडलाइंस क्या बयां कर रही हैं, बताएं हमारे श्रोताओं को।
संदीप, मैं अभी अहमदाबाद में हूँ और अहमदाबाद में साबरमती पुलिस स्टेशन का इलाका है। मेरे हाथों में अभी कई अखबार हैं, लेकिन मैं शुरुआत करता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया से। कल जाहिर है, कल पहले चरण का मतदान था और सारी अखबारों ने सुर्खियों में पहले नंबर की जो खबर है यही है कि कल पहले चरण में 68% मतदान हुआ है, जो कि 2012 के विधानसभा चुनाव से लगभग 3% कम है। और कई जगह पे कांग्रेस ने ईएमएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हैकिंग के आरोप लगाए हैं, लेकिन बीजेपी ने कहा है, जैसे अहमदाबाद मिरर ने लिखा है, कांग्रेस फियर ईवीएम हैकिंग, बीजेपी से फियर ऑफ लूजिंग। कांग्रेस ने आशंका जताई है कि ईवीएम हैकिंग की गई है, अहमदाबाद मिरर का कहना है, लेकिन बीजेपी ने कहा है कि हार का डर है। लेकिन इसी में एक और स्टेटमेंट है शक्ति सिदोही का, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा कि इसके बावजूद कांग्रेस जीतेगी। एक दिलचस्प खबर ये है संदीप की, लगभग अखबारों ने इसको कवर किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी रैली में पहली बार पाटीदारों के रिजर्वेशन पर बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस रिजर्वेशन का लॉलीपॉप देने की बात कर रही है, ऐसी ही घोषणा कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ की थी, क्या उसने मुसलमानों को आरक्षण दिया? मैं अपने मुस्लिम मित्रों से पूछना चाहता हूँ, क्या मुसलमानों को कांग्रेस ने आरक्षण दिया? अगर नहीं दिया तो कांग्रेस क्यों पाटीदारों के साथ ऐसे वादा कर रही है? मोदी ने यह भी पूछा है कांग्रेस से, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से छापा है कि कांग्रेस आखिर किसका आरक्षण छीनकर पाटीदारों को देगी? क्या ओबीसी का आरक्षण छीनेगी, या एससी का छीनेगी, या एससी का छीनेगी? और दूसरी खबर यह है संदीप, जो की टाइम्स ऑफ इंडिया के दूसरे पन्ने पे है, कल राहुल गांधी जो की कांग्रेस के अभी प्रमुख भी बनने जा रहे हैं, वडगाम में थे। वडगाम में दिनेश मेवानी के साथ उन्होंने रैली की। दिनेश मेवानी कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं है, वो निर्दलीय हैं, लेकिन राहुल ने उनके लिए प्रचार किया। और इस रैली में दिनेश मेवानी ने कहा कि वडगाम का लड़का वडनगर को हराएगा। जाहिर है वडनगर के प्रधानमंत्री मोदी हैं और दिनेश ने प्रधानमंत्री पर ही निशाना साधा है वडनगर और वडगाम के हवाले से। अभी मैं एक्सप्रेस जा रहा हूँ, इंडियन एक्सप्रेस से संदीप। इंडियन एक्सप्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान को छापा है जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस मेरे खानदान से सवाल उठा रही है। तो एक बार फिर से मोदी ने कांग्रेस के बयानों को लेकर लोगों से इमोशनल अपील की है। इसके साथ ही मेरे पास एक राजस्थान पत्रिका अखबार है जिसमें कई तरह के फोटो छपे हुए हैं, खास करके महिलाएं हैं जो लंबी कतारें लगी हुई है वोटिंग करते हुए। राजस्थान पत्रिका ने भी 68% मतदाताओं ने चुनी अपनी सरकार, ऐसी हेडिंग बनाई है, मतलब जो टर्नआउट हुआ है उसको लेकर। मैं डीएनए की बात कर रहा हूँ, डीएनए अखबार में लिखा है कि जो पाटीदार पॉकेट्स हैं वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज ज्यादा रहा है। अखबार का कहना है कि अब तक जो पाटीदार होते थे बीजेपी के पक्के समर्थक होते थे, लेकिन हार्दिक पटेल आने के बाद ऐसी आशंका जताई जा रही है कि वो कांग्रेस की तरफ मूव कर सकते हैं। अखबार का ये भी कहना है कि पाटीदार पॉकेट में ज्यादा मतदान प्रतिशत दोनों के फायदे में हो सकता है, चाहे बीजेपी के पक्ष में भी गए हो या कांग्रेस के पक्ष में भी गए हो। मेरे पास संदीप गुजराती भाषा में दो अखबार हैं, गुजरात समाचार और संदेश।
रजनीश, बहुत संक्षेप में बताइएगा।
तो इन दोनों अखबारों में भी संदीप, खास करके मतदान का जो फीसदी है, जो टर्नआउट है, इन दोनों को सुर्खियां बनाया गया है। दोनों के जो टॉप हेडलाइन है यही है।
बहुत शुक्रिया रजनीश, गुजरात से छपने वाले अखबारों की सुर्खियां बता रहे थे। और हम अब अगली खबर की ओर बढ़ रहे हैं। श्रोताओं, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनकी वजह से कोई शहर, कोई कस्बा, कोई मोहल्ला अचानक सुर्खियों में आ जाता है। पेशे से मजदूर अफराजुल की पहले हत्या और फिर उनके शव को जलाना, ये वैसी ही घटना है। और इस घटना के बाद राजस्थान का राजसमंद ज़िला खबरों में लगातार बना हुआ है। बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा राजसमंद के उसी मोहल्ले में पहुंचे और उन्होंने स्थानीय लोगों से इस पूरे घटनाक्रम के अलग अलग पहलुओं पर बात की।
बेटा, कौन सा मोहल्ला है ये?
कलालवाटी
मोहल्ला है। और वो जहां वो घर था, वो घर किधर है शंभू जी का?
वो आगे
आगे है।
तो ये राजसमंद का कलालवाटी रेगर मोहल्ला है। यहाँ खटीक समुदाय या दलित समुदाय के अधिकतर लोग रहते हैं और मैं यहाँ जा रहा हूँ। मुझे बताया गया है कि शंभू लाल का घर यहीं पे है। मैं लोगों से पूछने की कोशिश करूंगा, भैया शंभू जी किधर रहते हैं?
आगे रहते हैं।
आपको पता है उन्होंने क्या किया है?
मैंने सुना है मतलब कांड किया वो।
अच्छा, आप जानते हैं भैया शंभू जी को?
जानता भी नहीं हूँ, आगे मोहल्ले में रहता है।
थोड़ी को मानसिक स्थिति से थोड़ा, एक साल दो साल से काम भी नहीं कर रहा था और काफ़ी समय पहले एक लड़की की बातचीत चल रही थी। वो लड़की शायद बंगाल, उसकी बहन के बहन ही लगती है रिश्ते में, ऐसे प्यार के नाम से बल्ला फुसला के बंगाल ले गए। बंगाल के बाद वो शंभू अकेला जाके उस लड़की को वापस गया और लेके आया।
आपने देखा था वीडियो?
वीडियो देखा बिल्कुल मैंने।
तो क्या आपके मन में विचार आया वीडियो?
एक कांड तो बिल्कुल गलत किया है। वैसे तो लगता नहीं कि आदमी ऐसा कर सकता है, लेकिन जो उसके बीवी और उसकी बहन बता रही है कि वास्तव में काम धंधा तो कर ही नहीं रहा था। इस कांड पे अफसोस तो है, लेकिन ऐसा काम होना नहीं चाहिए, कानून का साथ लेना चाहिए।
लेकिन जो शंभू ने किया उसके पीछे एक कहानी बताई जा रही है, उस कहानी में कितना सच है?
सच्चाई है, वास्तविक है।
देखो यार, कुछ चीजें मतलब वास्तविक चीजें होगी जब तो आदमी ऐसा कदम उठाता है, बाकी कहानियां तो देखो मन बनाने बना भी सकते हैं।
अच्छा, उन्होंने शंभू जी ने अपनी वीडियो में कई बार हिंदुत्व की, हिंदुवादी विचारधारा की बात कही है, क्या यहाँ पे हिंदुवादी विचारधारा तेज हो रही है?
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हिंदुत्व की विचारधारा नहीं, हम तो सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की यही भावना रखते, हम तो एक ही भाई 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 है। ये हमारे वो कांग्रेस से वो है।
आपने देखा था वीडियो?
यस सर।
तो क्या क्या पृष्ठभूमि रही इस घटना के पीछे? क्या ऐसा कोई माहौल यहाँ पहले से था या
नहीं? सर, ऐसा कुछ माहौल नहीं था, नॉर्मली था। हालांकि पुरानी रंजिश होगी तो ये जानकारी उनके दोनों के बीच में ही थी।
यहाँ पे तीन चार बच्चियाँ खड़ी हैं, क्या नाम है आपका?
शिवानी।
किरण।
उसने बहुत गलत किया शंभू लाल ने।
जो लव जिहाद की बात उसने की है, क्या आपको लगता है ऐसा कुछ होता है?
हाँ होता है।
क्या होता है?
मुझे नहीं पता।
कुछ नौजवान खड़े हैं, मैं उनसे बात करूंगा। लव जिहाद की क्या बात है ये यहाँ पे?
लड़कियों को बल्ला फुसला के प्यार जाल में फंसा के उनको ले जाकर अपने राज्य, जैसे जहाँ पे भी रहते हैं, बंगाल है कहीं पे, ये रेगर मोहल्ले में एक घटना हो चुकी है ऐसी। वहाँ पे सुना कि ये आदमी उसका साथ दिया था, ये उस लड़की का जो भगाने में साथ दिया था, जो लोग पहले उसका लड़का, कोई लड़का है या दोस्त है, रिश्तेदार है, कोई भी है।
अच्छा, यहाँ पे कुछ हिंदुवादी संगठनों की शाखा वगैरह है, कार्यकर्ता हैं?
नहीं, हमारे इधर तो ऐसा कोई नहीं लगता है, हिंदुत्व की तरफ कोई झुकाव नहीं है। ऐसे तो हम सभी दलित हिंदू में ही आते हैं।
ये जो आए दिन मैटर चल रहे हैं, बाबरी मस्जिद वगैरह, पद्मावती फिल्म, 6 दिसंबर था
वही दिन,
बाबा साहब का दिन था वो,
बाबा साहब का दिन,
तो गलत ही हुआ है कुछ।
चौपाल सी लगी है, लोग बैठे हुए हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि कोई बात करेगा या नहीं। नमस्कार सर।
नमस्कार सर,
हम बीबीसी से आए हैं। ये जो शंभू लाल ने घटना की है उसी पे लोगों से बात करने के लिए, क्या विचार हैं यहाँ लोगों के?
अच्छे काम का अच्छा नतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा। अच्छा करेगा तो उसकी वाहवाही होगी, बुरा करेगा तो वो कानून के दायरे में आएगा, सरकार उसे सजा देगी।
राजस्थान के राजसमंद से स्थानीय लोगों की आवाज, मामला अफराजुल की हत्या का। और अब आपको हम मिलवा रहे हैं एक उभरते हुए खिलाड़ी से। महेंद्र सिंह धोनी से पहले झारखंड प्रदेश हॉकी खिलाड़ियों की वजह से जाना जाता था। धोनी के बाद अब झारखंड से एक और क्रिकेटर का अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ है। इनका नाम है पंकज यादव। बीबीसी न्यूज़ मेकर्स में आज मुलाकात पलामू के रहने वाले पंकज यादव से, उनसे बात कर रही हैं राखी शर्मा।
6 साल पहले मैं स्टार्ट किया खेलना, 1 साल बाद मेरी सिलेक्शन हुई अंडर 14 में, फिर मुझे अंडर 16 में बुलाया गया। फिर 3 साल मैं 16 खेला और दोनों साल मैं हाईएस्ट विकेट टेकर रहा दोनों साल 16 का। फिर मैं इस साल 19 खेला, 19 के बाद मैं जोन खेला, 19 जोन के बाद मैं वो अभी चैलेंजर खेला, चैलेंजर के बाद अभी मेरा सिलेक्शन हुआ।
तो चैलेंजर में कैसी परफॉर्मेंस रही थी, विकेट वगैरह कितने रहे थे?
चैलेंजर में मुझे 9 विकेट मिले थे 3 मैच में।
और वो परफॉर्मेंस कौन सी थी जिसके दम पर आपको लगता है कि आपने इंडियन टीम में जगह पाई?
वो मैंने लास्ट मैच में 5 विकेट निकाले थे, रन मैंने 10 ओवर में 57 दिए थे, 5 विकेट लिए थे मैंने।
पंकज, अंडर 19 इंडियन टीम में बहुत सारे बच्चों ने जगह बनाई है, लेकिन खास तौर से आपका नाम सामने एक वजह से आ रहा है, उसकी वजह है आपका एक हम्बल बैकग्राउंड से आना। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में?
मेरे पापा दूध बेचते हैं घर जाके, दूसरे दूसरे घर में। मेरे घर में 3 गाय हैं और मेरी मम्मी हाउस वाइफ है। जब मैं छोटा था तो तभी स्कूल जाता था तो बगल में मेरे ग्राउंड था घर के पास, वहाँ में वहाँ एक लड़का ड्यूज खेलने आता था मीन्स। तो मैंने मम्मी को बोला कि मैं भी खेलूंगा, तो मम्मी बोली ठीक है, लेकिन वहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा था किधर एडमिशन वगैरह करूँ। तो एक दिन पता चला कि BAU में प्रैक्टिस होता है, तो मैं चला गया देखने। तो 2-3 दिन लगातार देखा और सर ने बोला कि खेलेगा, मैंने बोला हाँ, फिर खेलने लगा। निवायन झा सर मेरे कोच।
तो घर में दिक्कतों के बावजूद किसने आपको हौसला दिया खेलने के लिए, किसने मदद का हाथ बढ़ाया?
ऐसा है कि घर से तो हुई परेशानी की पैसे वैसे के लिए, लेकिन मेरे सर मुझे पैसे की कमी होने नहीं दिए, हमेशा पूरा किए। मेरे किट बैग, जूते, ड्रेस वगैरह सब सर ही मेरी वो कर देते थे, इंतजाम कर देते थे।
तो पंकज, अगले महीने से U19 वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा न्यूजीलैंड में। आपको अगर प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिलता है इंडियन टीम में, तो अपने लिए आपने क्या गोल सेट किए हैं, क्या करना चाहते हैं?
अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं अपना बेस्ट दूंगा कि जिससे मेरी टीम को फायदा मिले, और मुझे भी अपनी बेस्ट एफर्ट देने की कोशिश करूंगा प्रैक्टिस में भी और मैच में भी।
अच्छा, U19 में इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया के बराबर 3 बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है, तो इस फॉर्मेट में खासकर U19 लेवल पे आपको लगता है कि अच्छा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो रास्ता है जो सीनियर टीम में जाता है, जैसे कि इंडियन कैप्टन विराट कोहली जो U19 टीम से ही आए हैं?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आगे का सोचता ही नहीं कि कल तो किसी ने देखा ही नहीं, सिर्फ आज मैं जीता हूँ। मुझे अगर आज अच्छा करूंगा तो कल भी अच्छा होगा, बस इतना ही पता है।
पंकज, आप रांची से आते हैं, रांची ने इंडियन क्रिकेट को एक बहुत ही उम्दा खिलाड़ी दिया महेंद्र सिंह धोनी के रूप में, आप पर उनका कुछ इन्फ्लुएंस है, उन्हें देखते हुए आप भी बड़े हुए होंगे?
बहुत सुंदर था कि धोनी जब छोटा था तो उनसे बहुत ही सीखा हूँ, बहुत ज्यादा कि उनकी जो कूलनेस है, इतना ठंडा दिमाग से वो डिसीजन वगैरह लेते हैं, इतना शांत है, वो सबके इज्जत करते हैं। उनसे कोई 10 साल भी कोई मिला भी नहीं होगा, फर्स्ट टाइम भी मिलेंगे तो लगेगा कि वो बहुत ही दिन से उसे जानते हैं।
उभरते क्रिकेटर, युवा क्रिकेटर पंकज यादव से बात कर रही थी राखी शर्मा। और अब बाकी के खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। पिछले दिनों भारत ने श्रीलंका के खिलाफ खेली गई 3 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-0 से अपने नाम की, और अब भारत और श्रीलंका 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में आज धर्मशाला में आमने सामने होंगे। एक दिवसीय सीरीज में भारत के कप्तान विराट कोहली को आराम दिया गया है, इसलिए टीम की कमान रोहित शर्मा संभालेंगे। उनके अलावा शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे, श्रेयस अय्यर, दिनेश कार्तिक और महेंद्र सिंह धोनी जैसे धुरंधर बल्लेबाज टीम में शामिल हैं। गेंदबाजी का भार भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल के अलावा युजवेंद्र चहल के कंधों पर होगा। श्रीलंकाई टीम की कमान थिसारा परेरा संभालेंगे। इससे पहले भारत ने श्रीलंका को उसी की जमीन पर खेली गई एक दिवसीय सीरीज में एक तरफा रूप से 5-0 से हराया था। पूर्व ऑलराउंडर अतुल वासन मानते हैं कि विराट कोहली की जगह टीम की कमान संभालने वाले रोहित शर्मा अपनी शानदार फॉर्म के दम पर कोई भी फैसला लेने की हिम्मत रखते हैं।
IPL में या कहीं भी कप्तानी करे, चाहे वो मुंबई की कप्तानी करे, ऑलराउंड व्यू रखते हैं खेल का, और अगर खुद की परफॉर्मेंस अच्छी हो रही हो जैसे हमने देखा विराट कोहली की, तो कप्तानी में भी 4 चांद लग जाते हैं, आपके पास कॉन्फिडेंस रहता है डिसीजन लेने का, ऐसे कि जो जब खुद कॉन्फिडेंस ना हो आप में, शायद आप कप्तानी में भी वो एग्रेसिव डिसीजन नहीं लेते। ऐसा विराट कोहली के साथ नहीं हुआ और मैं चाहता हूं कि रोहित शर्मा भी उसी तरह से कप्तानी करें।
खेल समाचारों के बाद चलते चलते खास खास खबरें एक बार फिर सुनेंगे।
BBC समाचार। इराक ने कथित इस्लामी चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अपनी जंग के खत्म होने की घोषणा की है। गुजरात विधानसभा चुनाव में कल पहले चरण का मतदान शांतिपूर्वक रूप से खत्म हो गया। इसराइल के शहर तेलवीव में लगातार दूसरे सप्ताह प्रदर्शनकारियों ने भ्रष्टाचार के विरोध में प्रदर्शन किया। होंडुरास में विपक्षी दलों ने औपचारिक रूप से पिछले महीने हुए राष्ट्रपति चुनावों को रद्द करने का अनुरोध किया है। BBC समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम को आप तक पहुंचाया शाकिर आलम ने। अगला प्रसारण दिन भर भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे। फिलहाल संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए अनुमति। BBC हिंदी.com है आपके साथ।